पहले अफ्रीका खंड की भाषाओं को हमें जब बताया इन भारतीयों को, इन विदेशियों ने, कि बुशमैन परवार अफ्रीका की भाषाओं की, बुशमैन बाटू सूडान हेमेटिक सेमेटिक पांच भागों में अफ्रीका को बांटा, अमेरिका की 300 भाषाएं जिनका वर्गीकरण तक अभी नहीं हुआ, यूरेशिया खंड की भाषा और प्रशांत महासागर खंड की भाषाओं में मलयन मलेशियन पॉलिनेशियन पपुअन और जहां महाराजी पधार रहे हैं ऑस्ट्रेलियन, ऑस्ट्रेलिया को जिस खंड में लिया उसी में हमारा नंबर आया भारोपीय परिवार। भारोपीय परिवार में अंग्रेजी के साथ हमें रखा भारत और यूरोपीय परिवार। इस भारोपीय परिवार में से निकली कैंटम और शतम, कैंटम से जन्म हुआ अंग्रेजी का और शतम से निकली संस्कृत। इस प्रकार जिस खंड में इन भाषा वैज्ञानिकों ने हमारी लैंग्वेज भारत की संस्कृत भाषा को रखा था, आज उसी भाषा वाले एक खंड में महाराष्ट्र का ये यात्रा का प्रकरण चल रहा है, तो हमें याद आई इन लोगों ने ये खंड हमें घुटाया था। एमए की परीक्षा में इसे हम लोग पढ़ाते भी रहते हैं। उस खंड में ही महाराष्ट्र की यात्रा हो रही है जहां ऑस्ट्रेलियन लोग ये भाषा बोलते हैं। जहां तक महाराज जी का प्रश्न है, वो तो भारत राष्ट्र के गौरव को कभी घटा ही नहीं सकते। श्रीमती नायडू के शब्द, द मैन हु डज नॉट लव हिज कंट्री इज डूम्ड टू द कंट्री। दो ही है टाइट इज वेल्थ एंड पॉवर्स, येट ही सेल्फिश हे डाइज ए डबल डेथ। तो महाराष्ट्र के इस भारत के प्रेम को कोई इनसे अलग कर नहीं सकता। अब प्रश्न ये, क्या ये जा रहे हैं? नहीं, ये जाएंगे कैसे? हमें जाने थोड़े ही देंगे। ये तो केवल कुछ दिन के लिए जो भारतीय आत्मा बिछुड़ गई उन पर कृपा करने को चले तो चले जाएं, खूब जाएं। सूरदास से भगवान बोले, मैं मिलूंगा नहीं। सूरदास जी बोले, निकल जाओ, देखता हूं कैसे हाथ छोड़ा लो। अरे आ जाओ, बोले नहीं आता। अच्छा नहीं मिलोगे? बोले नहीं मिलता। अच्छा लाला, बाह छोड़ाए जा तो हो निवल जान के मोए। महाराज जी आप चले जाओ, आपके भक्त इतने तगड़े हैं कि आप वहां कितने भी दिन क्यों ना रहो, आप हृदय से कैसे निकाल ले जाओगे? जिन भक्तों के हृदय में आप, जिन वैष्णवों के हृदय में आप बैठे, क्या उनके हृदय से निकल जाएंगे क्या? मैं नहीं समझता कि हमारे आपके हृदय से ये निकल करके जा सकेंगे। इसलिए अब इनका एक कार्य है। भगवान ने कहा था कि मैं समय समय पे आता हूं, तो महाराज आप बार बार आते हैं, सबको तो मिलते नहीं। भगवान मिलते क्यों नहीं सबको? गीता में भी कहा है, यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवत भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानम सृजाम्यहम्। तो आप तो बहुत कम आते हो, 24 अवतारी तो हैं। अब इस भारत को आपका प्रतिनिधित्व कौन करेगा? बोले ये साधु करेंगे, ये साधु करेंगे। महाराज भगवान के तो दर्शन से, सेवा से पुण्य मिलता है। हम ठाकुर जी की सेवा करें तो पुण्य मिलता है। श्रीमद् भागवत जी की ओर चलें। श्रीमद् भागवत जी में कहा, सब में बड़े कौन? बोले तीर्थ। वैसे तो एक दूसरी और बात है, उसे भी बताऊंगा। महाराज जी बड़े क्यों हैं? लोग रोज जाते हैं आपके लिए दिल्ली के हवाई जहाज विश्रामालय पर, सैकड़ों लोग जाते हैं, हजारों लोग जाते हैं आते हैं। महाराज जी में क्या विशेषता हो रही है? महाराज जी की विशेषता देखिए आप, भागवत जी के शब्दों को साकार करने वाले ये हजारों जो हवाई जहाज में बैठकर जाते हैं वो नहीं कर पाते, उसे यदि कोई कर पाता है तो वो केवल भक्त वेदांत नारायण जैसा विद्वान कर पाता है। नैयम मयान तीर्थानी, क्या पानी के तीर्थ कम हैं? नहीं। तो क्या बात हुई? क्या देवताओं की कमी हो गई? नहीं। तो हम देवता पूज लेंगे, महाराज की याद नहीं करेंगे। हम जलों में गंगा जी जमुना जी में स्नान करेंगे, तीर्थों में जाएंगे। भागवतकार कहते हैं सुनो, ये पानी के तीर्थ, ये मिट्टी काष्ठ के बने देवताओं के विग्रह, ये इतनी जल्दी तुम्हें नहीं तारेंगे भाई। मुझे नहीं लगता ये इतनी जल्दी तुम्हारे पापों को क्षीण कर दें। न देवा मृत शिलामया के पुनन्ति, ये पवित्र को करते हैं वह उर्कालीन, बहुत समय लगाते हैं। और महाराज जी जैसे जो साधु है, ये दर्शनादेव दर्शनादेव दर्शनादेव, इनके दर्शन कर लो तो तत्काल पाप दूर हो, इसलिए इनकी यात्रा है। इसलिए औरों की यात्रा से महाराज जी की यात्रा, महात्माओं की यात्रा भिन्न होती है। अन्यथा कोई प्रश्न कर सकता है कि विदेश तो सभी लोग जाते हैं, अब महाराज जी के बारे में इतना क्यों सोचते हैं? ये भागवत जी प्रमाण है। अब रही बात यह कि आप विदेश जाते हैं क्या? ना महाराज जी, हम तो भागवत के पाठक हैं, भागवत पढ़ने वाले हैं। आपने ही तो बताया था भागवत जी में कि इस समग्र भूमंडल का एक पृथ्वी थी, प्रियव्रत राजा का रथ का चक्र घूमा, सात टुकड़े हो गए, सात द्वीप बन गए। यहां तो एक नवद्वीप के भी आए, सात द्वीप तो भागवत में थे, नौवें द्वीप और हो गए, नवद्वीप बापरू आए। तो द्वीप सात बन गए, सात द्वीपों में प्रियव्रत राजा की ध्वजा पताका फहराती थी। आप कृणवंतो विश्व मार्यम का संदेश लेके जाती है समग्र विश्व। हमने कभी भारत को अपना अंश नहीं कहा, हमने कभी नहीं कहा कि भारतीय सुखी हो और सब दुखी हो, ये छोटी संप्रदाय वालों का मत है। आपने तो यही कहा कि वसुधैव कुटुंबकम, सारी वसुधा हमारा कुटुंब है। तो आप एक कुटुंब को झांका रहे हैं। अरे बड़ा घर का कोई होता है, कभी बड़े बच्चे के पास रहा तो कभी छोटे बच्चे के पास रहा, हमें तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा। हमने सोचा कि अब हमको कुछ दिन के लिए, आपने सोचा इनका मन भर गया है, चलो कुछ अपने और बच्चों को भी देखे। हमें तो घर के बड़े बूढ़े अपने बालकों को देखते हैं, हम तो उस भावना से आपको विदा कर रहे हैं कि आप हमारे कुछ दोषों से नाराज होके नहीं जा रहे। अगर दोषों से नाराज होके माँ बाप जाए तो बहुत बुरा लगता है। महाराज जी ऐसी बात तो नहीं, आप नाराज होके तो नहीं जा रहे हैं। तो महाराज जी नाराज होके नहीं जा रहे तो हम खुशी से, अपने जो अन्य भाई वल्लभाचार्य जी जब आए तो उनसे कहा कि श्री वल्लभ एक कार्य करो, आप भारत भ्रमण करो। बोले मैं क्यों करूं भारत भ्रमण? बोले दैवी जीवों का उद्धार करो, जो दैवी जीव आए हैं सहस्त्र पर्वत्सरों से बिछुड़ गए हमसे, उनके ऊपर कृपा करो। श्री वल्लभाचार्य जी ने दैवी जीवों का उद्धार किया, आप भी उद्धार के लिए आए हैं। हम आपको यदि एक सूत्र में बांध के बैठ जाएं तो हम स्वार्थी होंगे, हम अपने स्वार्थ को छोटा करेंगे और अपने अन्य भाइयों के कल्याण को आप जाते हैं, इसलिए प्रेम से आपको यहाँ से विदाई देते हैं और प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि आप उनके भी उद्धार वैसे ही करें जैसे कि शास्त्रों में महात्मा सबका भला करते थे। उनका उच्च स्वर था, सर्वे भवंत सुखनः, सर्वे संत निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्त मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सब में बड़ी पृथ्वी, पृथ्वी को पानी ने घेरा, पानी को पी गए, पानी भी पृथ्वी ताप देयम् महस्व महति तद्वेष्टितम् वारधि पीतो सौ कलशोद्भवे न मुन्ना सब्जोम ने खज्योतवत्। बड़ा कौन है? बड़े आपके हृदय में बैठे महाराज जी, हम आपकी शुभकामना भी किन शब्दों से करें? क्यों कि वो करता है किसी के लिए जिस पर कुछ होता है। एक बार एक सज्जन ने कहा कि आप भगवान को भेंट करो, बोले वो तो कॉस्ट्यूम मणि पहनी, बोले आसन दो, बोले गरुड़ जी पे बैठे। तो वो बात है कि मासनंते गरुड़ासन आय किम भूषणम कौस्तुभ भूषण आय। महाराज जी पृथ्वी बड़ी, पृथ्वी से बड़ा जल, जल को पी गए ऋषि, ऋषि आकाश में तारे के समान, तो आकाश बड़ा हुआ। आकाश को नाप लिया बामन जी ने, तो बामन जी बड़े हुए, ठाकुर जी बड़े हुए। ये ठाकुर जी आपके हृदय के कपाट में बंद करके बैठे हुए, तो समय बड़े तो आप हुए। अब हम कई शब्दों से आपका मंगलाशंसन भी करें, हम पे तो शब्दों का भी अभाव है, शब्दों की दरिद्रता है कि आपके प्रति हम क्या बोलें, क्या कहें। परंतु इतना कह सकते हैं कि आप पधार रहे हैं तो अच्छा है, आपके हृदय में सदा जो श्याम सुंदर प्रभु वे प्रेतमा जी के साथ आपका सदा मंगल करें। भागवत में जो कुछ नारायण कवच में कहा हो, वो नारायण कवच आपके नारायण के साथ जुड़ जाए। जब आप कभी अपथ्य भोजन करें, क्यों विदेशी न जाने क्या कुछ खिला दे आपको, नए नए फल जो यहाँ नहीं होते हो, तो धन्वंतरी जी आपकी रक्षा करे। अगर आप जंगल में कहीं निकट जाए तो नरसिंह जी आपकी रक्षा करें, और स्वामी जी आपके साथ लाला कन्हैया सब जगह है। हम तो ब्रजवासी हैं, जो आप हमें बड़प्पन दे देते हैं। इन शब्दों के साथ मैं पुनः श्री चरणों की विदेश यात्रा के समय बड़े उत्साह से, बड़े प्रेम से अन्य भाइयों से मिलने पधारते हैं, आपकी शुभकामना करता हूँ और उनसे कहता हूँ, देखो ज्यादा महाराज जी को मत रोकना, जल्दी से भेज देना।
जैसे कि आपने रोजी डॉक्टर हमारे श्री वासुदेव कृष्ण जी महाराज के सर्व विचार सुने और उनकी शुभकामनाएं ब्रजवासी होने के नाते शुभाशीर्वाद श्री अन्नम पातु गोविंद है अनम पातु माधव। तो अब इस श्रृंखला में मैं आमंत्रित करता हूँ अमेरिका वासी श्री सज्जन महाराज को, वो अपने भाव अभिव्यक्त करें। श्री सज्जन महाराज
ओम ज्ञानतिमिरन्दस्या ज्ञानाञ्जनाशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। माय बिलोवेड गुरुदेव श्रील भक्ति रक्षक श्रीधर देव गोस्वामी महाराज वाज वेरी फॉन्ड ऑफ द aphorism Satyam Shivam Sundaram. He said that although the general definition of the Atma is Sat Chid Anandam. He said this is not quite sufficient. Poetically, he said this. He said, beyond Sat Chid Ananda, there must be Satyam Shivam Sundaram. If if a teacher does not speak the truth, the absolute truth, Satyam, then we are not so very benefited by what they say. There may be some small, relative, insignificant benefits, but nothing of lasting value. So Satyam was determined to be an essential ingredient. And I have been very blessed to be permitted to serve Srila Bhaktivedanta Narayan Maharaj for the last 12 years or so. And I can attest to the fact that the Satyam is surely there in full measure. And then the second element, Shivam, auspiciousness, that which brings freedom to the soul. When one is dreaming, they're not in a free condition. There is so much difficulty, fear, so many undesirable sentiments, feelings, ideas come when one is under the influence of a dream. But when they are awake, they can feel natural. They can express themselves in a natural way from their hearts, truthfully and lovingly and beneficially. And so, once again, I can attest to the fact that Srila Bhaktivedanta Narayan Maharaj has this quality of Shivam, giving freedom to all those who he bestows his grace upon, to become free from the clutches of sensual desires and from thinking that we have so many other necessities other than our real inner necessity, the soul's inner hankering for bhakti to Sri Sri Radhan Govinda. And then the final element, Sundaram. There are two kinds of Anandam. There is the static and the dynamic. And Srila Sridhar Maharaj said, only in the dynamic conception of Anandam is there this infinite sweetness, infinite beauty, infinite rasam. And, of course, Sri Govindadev has been ascertained to be the Akhila Rasamrita Murti, the very cynosure, the embodiment, the emporium of rasa. And one who gives Govinda to others, along with Srimati Radhika and all of their beloved eternal associates, he also is Sundaram in full measure. Once again, we must honestly admit that His Divine Grace, Srila Bhaktivedanta Narayan Maharaj, fulfills this qualification as well. So, in the Western countries, there is a very conspicuous absence of truth and purity, or satyam. There is a very noticeable lack of shivam, that which is auspicious, beneficial, and all good. And it is very, very difficult to find real beauty, which is not merely skin deep, not merely on the surface of what we see. So therefore, the West is, we can't even describe the great fortune of the Western countries, once before blessed, now twice blessed, and we pray, further blessed in the future, to have the holy lotus feet of His Divine Grace, Srila Bhaktivedanta Narayan Maharaj, on those shores, on those grounds, delivering, freely distributing. In the mood of Mahaprabhu's Audarya, this Satyam, Shivam, and Sundaram in full measure to all those who would be receptive to it, just like the sun distributes freely to anyone who just simply goes out into the sunshine. There is no question of his requiring, quote-unquote, the blessings of others in order to distribute this Satyam, Shivam, and Sundaram all over the world. And yet, that is one of the aspects of his Satyam, of his purity, that he is requesting the blessings of all for this auspicious undertaking. And therefore, we are certain that it will be bestowed once again, as he bestows in full measure this sweetness, this truth and beauty and love, so too will the full mercy of the Lord and all the Vaishnavas, all the Brijbasis, come upon him in full measure.
उस सरोवर की शोभा स्वतः ही बढ़ जाती है और जिस सरोवर से वो उड़ जाते हैं एक बार तो वो श्रीहीन हो ही जाता है। यद्यपि ये ब्रजभूमि भगवान की लीला स्थली रही है लेकिन फिर भी जब भगवान ब्रज से मथुरा आ गए तो वहां सूरदास की वर्णन यही करते हैं कि सूरदास प्रभु भी यह गोकुल और ही हूं न लय वहां महत्व नहीं मानते हैं स्थान का भगवान के बिना। वैसे तो भगवान सर्वव्यापी है सब जगह रहते हैं उसे तो ज्ञान दृष्टि से देखें तो अग्नि काश में रहता ही है उसमें कोई कहने वाली बात नहीं है लेकिन जब तक वो अग्नि काश में से प्रकट नहीं होगा तब तक शीत दूर नहीं हो जाता। ऐसे ही भक्तों को जब तक भगवान प्रत्यक्ष सामने नहीं आ जाते हैं तब तक उनको संतुष्टि नहीं होती। जब तक उनको प्रत्यक्ष न देख लें तब तक उनको संतुष्टि नहीं होती और उनका थोड़े भी समय के लिए कहीं भी जाना अखरता ही है। वैसे भाग्य है ऑस्ट्रेलियनों का, ऑस्ट्रेलिया वासियों का, न्यूजीलैंड वासियों का जहां महाराज जी जा रहे हैं और उनको वहां घर बैठे ही महाराज जी जैसे एक महापुरुष का संग मिल रहा है मिलेगा और हमको यहाँ मथुरा में रहने पर भी एक बार तो महाराज जी जाएंगे तो लगेगा ही आश्रम में रिक्तता जैसी हमको तो लगेगी ही। अब वो संतुष्टि के लिए कुछ भी कहने वो एक दूसरी बात है और जैसा कि ब्रजवासियों का स्वभाव होता है भगवान श्री कृष्ण जी जब मथुरा आए थे तो परसों के दिन की कह आए थे कि परसों आ जाऊंगा और ब्रजवासियों ने मान भी लिया था किसी ने उनसे लिखित में या कोई एग्रीमेंट नहीं करवाया कि आना ही पड़ेगा। ऐसे हम भी मान ही लेंगे कि महाराज जी अपनी यात्रा शीघ्र ही पूरी करके यहाँ आ जाए किंतु हमारे लिए फिर भी ये विश्वास बहुत आवश्यक है कि महाराज जी अपने मुख से हमको ये दो शब्द कहकर विश्वास दिलाएं कि वो यथाशीघ्र तुरंत ही जैसे ही उनका कार्यक्रम समाप्त होगा उन्हें हमें दर्शन देने के लिए यहाँ आ जाएंगे। ये विश्वास जब तक उनके मुख से दो शब्द सुने बिना हमको तो नहीं होगा इसलिए हमारी प्रार्थना है कि वो हमें विश्वास दिलाएं कि वो आनंद बता देंगे। महाराज
अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिशे नमः। परम आदरणीय सभापति महोदय, ब्रज के मूर्धन्य विद्वान, परम भक्त हमारे वासुदेव कृष्ण जी, चतुर्वेदी जी, अन्य वैष्णव वृंद, वैष्णवी वृंद, मैं सर्वप्रथम अपने गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट हूँ विष्णुपाद श्री श्रीमद भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में अपनी श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पित करता हूँ। मैं ब्रज से बाहर तो कहीं नहीं जाना चाहता था, विशेष करके इस अवस्था में, किंतु चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा है, पृथ्वी ते अठ जतो नगर अभिग्राम सर्वत्र प्रचार होई बेमरुना। विश्व में जितने नगर, ग्राम, राष्ट्र भर जितने भी राष्ट्र हैं, सब में भगवान का नाम प्रचार होगा, गीता और भागवत की कथाएं सर्वत्र प्रचारित होंगी, इसी से जगत का कल्याण है। इसीलिए भगवान का अवतार होता है, साथ में भक्त भी उनके साथ में आगे पीछे अवतरित होते हैं। मूल उद्देश्य यही है, संसार के जितने जीव हैं भगवान की सेवा भूलकर, उनका स्मरण भूलकर, इस शरीर को ही मैं मान लिया और इसी में व्यस्त रहते हैं। कृष्ण ने अर्जुन को यही गीता में संदेश दिया, श्रीमद् भागवत में उद्धव इत्यादि को यही संदेश दिया। ये भूले भटके जीव हैं, इसके लिए मैं भागवत के रूप में अवतरण होता। श्रीमद् भागवत और कुछ नहीं, ये स्वयं कृष्ण है, कृष्ण का स्वरूप है। उनके जितने भी अंग हैं वो सब भागवत के ये स्कंध इत्यादि हैं। तो विश्व में, विशेष करके भारत के बाहर, कृष्ण का संदेश ठीक से पहले नहीं पहुंचा। बहुत कम साधु लोग भारतवर्ष से ब्रज के भावों को लेकर के, कृष्ण तत्व को लेकर के प्रचार नहीं किया, इसलिए वो लोग विशेष भारतवर्ष के लोगों की अपेक्षा भी भौतिकवाद में अत्यंत अधिक बढ़े चढ़े। रुपया तो उनको इतना है, धन इतना है, तो वे खर्च कैसे करें इसके लिए चिंतित हैं और देख रहे हैं कि धन के द्वारा कभी भी सुख नहीं हो सकता, इसकी उपलब्धि कर चुके हैं। इसलिए थोड़े से भी हमारे भारतीय संस्कृति के, गीता के, भागवत के संदेशों को सुनते हैं तो मुग्ध हो जाते हैं और बड़ी गहराई से वो लोग विचार करते हैं। इसलिए उन लोगों ने, मैं पहले हमारे भक्ति वेदांत स्वामी जी गए, उसके पहले हमारे परम पूज्यपाद वन महाराज जी, भक्ति हृदय वन महाराज जी गए, विदेशों में बड़ी सुंदर रूप से उन लोगों ने प्रचार किया। भक्ति वेदांत स्वामी जी तो विश्व में सर्वत्र राधा कृष्ण के मंदिर बने, प्रचार के केंद्र खुले और वहां से सर्वत्र गीता भागवत इत्यादि का संदेश सुनाया। जीवात्मा अजर अमर है, उनको छोड़ने से ही जनसार में लोग दुखी हैं और दुखी रहेंगे, इसलिए किसी प्रकार से उनको, उनकी चित्त वृत्ति को भगवान के तरफ में मुड़ दिया जाए, इससे अधिक कल्याण की कोई भी बात विश्व में नहीं है। कोटि कोटि अस्पताल, कोटि कोटि शिक्षा मंदिर इत्यादि बने, तो भी यदि एक जीव को, उसके चित्त वृत्ति को भगवान की तरफ में मोड़ दिया जाए, यह कोटि कोटि गुण अधिक कल्याण होगा। इसलिए हम लोगों के पूर्वाचार्य श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जी ने अपने शिष्यों को पश्चात देशों में भेजा, उन लोगों ने यहां पर इस चीज का प्रचार किया। इसके बाद में हमारे पूज्यपाद वन महाराज जी गए, उसके बाद में हमारे स्वामी जी गए, किंतु उन लोगों के जाने के बाद में फिर कुछ लोग निराश हो जाते हैं, उनका कोई आश्रय नहीं रहता। तो मैं समझता हूं कि इसे हमारे चैतन्य महाप्रभु जी नहीं या कृष्ण नहीं स्वयं प्रेरणा देकर के उन लोगों के माध्यम से हमको वहां पर बुलवाया। उन लोगों में हमने देखा न कोई परिचय न कुछ, बड़े बड़े विद्वान व्यक्ति, डॉक्टर लोग, इंजीनियर लोग, फिलोसफर लोग, बड़े बड़े खोल मृदंग करताल लेकर के एयरपोर्ट में खड़े होकर के कीर्तन करते हुए हम लोगों को स्वागत करके ले गए। वहां पर वो लोग सुनना चाहते हैं जो भारत में कैसे कैसे संत हुए और क्यों वो लोग सुखी हैं, गरीब होने पर भी आज भी वो लोग सुखी हैं क्यों नहीं समझ पाते। उन्होंने ये सब चीज नहीं सुनते कि आत्मा अजर अमर है, शरीर नष्ट हो जाएगा, हम इस संसार की कोई भी चीज लेकर के नहीं जा सकते, वो लोग कभी नहीं सोचते हैं। इसलिए भारतीय संतों का संघ मिलने पर ये सब जब विचार सुनते हैं तो उनमें वैराग्य का उदय होता है और बड़ी इच्छा से, उत्कंठा से राधा कृष्ण की ब्रज की लीलाओं को सुनते हैं, चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं को सुनते हैं, बड़ा आदर करते हैं। मैंने पहले कहा था कि जब वहां पर गया तो मैंने सबसे पहले कहा कि हमारे राजनीतिक नेता लोग आते हैं दरिद्र भारत से, उनको पैसा चाहिए, पैसे की के लिए झोली फैला करके विदेशों में जाते हैं। आधुनिक संन्यास, आधुनिक जो विज्ञान है इसकी उन्नति उद्दर में बहुत अधिक है, इसके लिए वो लोग जाते हैं, एरोप्लेन के लिए उधर जाते हैं, चिकित्सा विज्ञान के लिए उधर में जाते हैं और अधिकतर से पैसे के लिए लोग जाते हैं। मैंने कहा कि मैं इसके लिए नहीं आया, मैं समृद्ध भारत से आया हूं, मुझे पैसे की जरूरत नहीं, मैं तुम्हें वो चीज दूंगा जो तुम्हारा कायाकल्प कर देगी, तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। भगवान नाम हम लोग देंगे, भगवान की भक्ति देंगे, आत्मतत्व का ज्ञान देंगे जो विश्व को नहीं है, ये हमारे भारतवर्ष की अपनी संपत्ति है, यही वैदिक संपत्ति है, इसलिए हम लोग सुखी हैं। हम उसका एक छींटा भी आप लोगों को मैं दूंगा या हमारे आचार्यों ने जैसा दिया, आप लोगों का जीवन कृतार्थ हो जाएगा। और सचमुच में जब श्रीमद् भागवत की गीता के उपदेशों को उनको सुनाता, चैतन्य महाप्रभु के विचारों को सुनाता तो वो लोग बड़े उत्कंठित होकर के इनको सुनते और हजारों लोग इस आत्मधर्म की तरफ में प्रवेश किया, एक दो नहीं, उनों की कितनी लग्न हमने देखी, मैं आश्चर्य हो जाता था। वहां मैं टूटी फूटी इंग्लिश बोलने से भी, अंग्रेजी बोलने से भी उसका भाव ग्रहण करते थे और ट्रांसलेशन करने वालों को, अनुवाद करने वालों को बीच में मध्यस्थ नहीं रखना चाहते थे, मैं जैसे बोलूं उसी को वो बड़े प्रेम से सुनते हैं, दूसरे किसी को बीच में बोलने नहीं देते थे, जो अनुवाद की कोई जरूरत नहीं है, आप जैसे बोलेंगे वैसे ही हम लोग सुनेंगे। अरे से आपकी अंग्रेजी तो बहुत अच्छी है, मैं जानता हूं कि हमारी अंग्रेजी इतनी अच्छी नहीं है तो भी, किंतु उसमें कृष्ण नाम और कृष्ण की कथाएं, चैतन्य महाप्रभु के उपदेशों को सुन करके वो लोग अपने को धन्य मानते थे। अभी हमारे साथ में, अभी जो ब्रजमंडल की हमने परिक्रमा की, तब तक 200 से अधिक समृद्ध परिवार के, बड़े शिक्षित परिवार के लोग बिना जूते के और बिना किसी चीज के हमारे साथ में ब्रजमंडल में परिक्रमा किया और अभी भी वहां से पत्र आते हैं, ये हम लोग इसको भूल नहीं सकते। अभी विश्व में ऐसा कोई राष्ट्र नहीं है जहां पर हमें नहीं बुला रहे हैं, हमको समय नहीं और इतना दिन बाहर विदेशों में रहना भी नहीं चाहता, मैं तो ब्रज को एक मिनट के लिए नहीं छोड़ना चाहता है, किंतु हमारे गुरु वर्गों का ऐसा आदेश है, कृष्ण ने भी ऐसा आदेश गीता में दिया है, जो श्रद्धालु हैं, जो भक्त हैं, उनको ये गीता का संदेश दो, उनका कल्याण, श्रीमद् भागवत में भी ऐसा ही कहा गया है, चैतन्य महाप्रभु जी की ऐसी शिक्षा है, हमारे गुरु जी का भी यही, तुमको हमने जो चीज दिया है तुम्हारे लिए ही केवल नहीं दिया है, विश्व में इसका प्रचार होना चाहिए, विश्व से अधिक लोग इन चीजों को ग्रहण करके अपना जीवन सार्थक कर सके, इसलिए दिया। तो मैं समझता हूं कि गुरु जी की यही दक्षिणा हमको देने के लिए जाना है भारतवर्ष में। मुझे तो ऐसा नहीं लगता है कि वो कहीं अलग में जा रहा, मैं तो ऐसा देखता हूं कि सारे राष्ट्र एक परिवार के हैं। मैं विश्व से अपने भारतवर्ष को अलग नहीं समझता, उसी के अंदर में है। मैं तो ऐसा जाता हूँ जैसे मैं पड़ोस में जाता हूँ, यहाँ से हमको दिल्ली जाने में मान लिया कि 3 घंटा लगता है, तो यहाँ से इंग्लैंड अमेरिका जाने में नहीं तो 6 घंटा नहीं, 8 घंटा नहीं, 10 घंटा लगता है। एक ही दिन में चला जाना, फिर चाहे तो लौट करके आ सकते हैं, तो फिर दूर कहाँ रहा है, इसलिए दूर की कोई सी बात नहीं है। इसलिए हमारे ब्रज के विचारों का, कृष्ण के विचारों का, चैतन्य महाप्रभु के उपदेशों का विश्व में प्रचार हो और सभी लोग सुखी हों, यही हमारे आचार्य वर्गों का ये विचार है। कृष्ण इसीलिए आए, राम इसीलिए आए, हमारे समस्त अवतार लोग आए, नारद ऋषि की आपने बात सुनी, इसी तरह से आज तक का हमारी जो चारों वैष्णव संप्रदायों के या और भी सब लोगों का यही उद्देश्य रहा कि भारत का यह संदेश विश्व में जाएगा, विश्व के लोग सुखी रह सकते हैं। जो भारतवर्ष में भी हैं और कृष्ण का यह संदेश नहीं पालन करते, नहीं सुनते, उनका जरा वो दुखी उनका जीवन रहेगा, यह जीवन भी और आने वाला जीवन भी उनका दुखी रहेगा। इसलिए मैं कुछ कष्ट मेरे लिए होता है तभी मैं जाता हूँ और जा रहा हूँ कि सबका कल्याण हो, सबका सुख हो। मैं आज मैं बहुत कृतार्थ हुआ, अपने को मैं बहुत धन्य समझता हूँ कि ब्रज के ब्रजवासी लोग यहाँ पर आए, वो धन्य विद्वान लोग आए, भक्त लोग आए, आप लोग भी सब, और हमें इतना सुंदर आशीर्वाद दिया, यही हमारा पाथेय है जाने का, ले जाने का। मैं इसी समय प्रसन्न होकर के, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। यहाँ पर जयपुर से हमारे गोविंद जी, हमारे गौड़ीय वैष्णव के आराध्य हैं, उन्होंने वहां से अपनी आदेश माला वहां से भेजा जो ये लेकर के आए हैं प्रसाद। मैं और भी समझता हूँ कि ये ठाकुर जी का भी ये परम आशीर्वाद है, जैसे इन लोगों का आशीर्वाद है, यही हमारे लिए परम संपत्ति रहेगी। मैं इसी को लेकर के सर्वत्र भारतवर्ष के इन विचारों को बड़े सरल सहज तरीके से मैं उनको दे सकूं, और मैं समझता हूँ कि जरूर दे करके आप लोगों का यह आऊंगा और वो लोग जीवन में सुखी रहें, यही कह करके मैं अपना वक्तव्य सुना।
परम पूज्य महाराज जी, उपस्थित सभी भक्तगण, आप जरा 5 मिनट और शांति से बैठे, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, कृपया कर 5 मिनट शांति से सुने। परम पूज्य महाराज जी, उपस्थित सभी भक्तगण, आज ये इस आश्रम के लिए नहीं सारे ब्रज मंडल के लिए बहुत ही गौरव की बात है कि महाराज जी पुनः विदेशों के अंदर में भगवत नाम का प्रचार करने के लिए, हिंदू धर्म और संस्कृति का प्रचार करने के लिए और श्री कृष्ण की लीलाओं का, श्री कृष्ण के चरित्र का प्रचार करने के लिए पुनः विदेशी यात्रा पर जा रहे हैं। पहले भी महाराज जी पधारे थे और अपना मंतव्य पूरा करके बहुत ही स्वस्थ तथा प्रसन्न हम आश्रम वासियों के भक्त लोगों के बीच में पुनः पधारे थे। ये परम सौभाग्य की बात है कि जब महाराज जी पहले विदेश यात्रा के लिए पधारे थे तो उसकी पूर्व बेला के समारोह में आपने मुझे अध्यक्ष बनाया था। जब महाराज जी अपना मंतव्य पूरा करके विदेश की यात्रा के अंदर में श्री कृष्ण के नाम का, भगवत नाम का प्रचार और प्रसार करके 3 महीने के बाद वापस आए, तो उस बेला में, उस समारोह में, स्वागत समारोह में महाराज जी को आपने मुझे पुनः अध्यक्ष बनाया था। और आज जब पुनः महाराज जी दोबारा मात्रा के यात्रा के लिए विदेश जा रहे हैं तो आज आपने पुनः फिर मुझे अध्यक्ष बनाया है। महाराज जी जब पहले पधारे थे तो वहां से उनके बराबर मेरे पास में पत्र आते थे तो मेरे हृदय के अंदर में ये उनके प्रति बहुत ही श्रद्धा भक्ति पैदा हुई कि महाराज जी विदेश जाने पर भी वहां मेरे याद कर रहे हैं और मेरे यहाँ पर श्री कृष्ण और श्री राम का मंदिर है कोठी में, तो मैं रोज वहां ये प्रार्थना करता था कि महाराज जी सकुशल अपने मिशन में सफल होकर के भगवत नाम का प्रचार करके विदेशों से वापस आए। और अब मैं आपको पुनः विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि महाराज जी जब तक रहेंगे मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि वे सकुशल रहें और भगवत नाम का प्रचार करके, प्रसार करके स्वस्थ तथा प्रसन्न चित्त से फिर हम सब लोगों के बीच में आए और हम फिर यहाँ पर उपस्थित हों उनका स्वागत करने के लिए। आज महाराज जी पधार रहे हैं तो आश्रम के जितने भी भक्त हैं उनकी उनकी शक्ति उनके साथ है, मथुरा वासियों की सद्भावना और श्रद्धा उनके साथ है, प्रभु की उनके ऊपर कृपा है, उनके हृदय के अंदर में श्री कृष्ण का स्वरूप अंकित है और उनके जिह्वा पर श्री राम और श्री कृष्ण की वाणी है। तो इतनी शक्तियों को लेकर के जो व्यक्ति विदेश के लिए बहुत ही पुण्य कार्य के लिए जा रहा है उसमें सब महाप्रभु की वाणी थी, वो किसी विशेष समुदाय के लिए नहीं, विशेष समाज के लिए नहीं, किसी एक देश के लिए नहीं, सारे संसार के मानव जाति के कल्याण के लिए थी, सारे संसार की मानव जाति के लिए थी। और उसी के लिए उन्होंने श्री कृष्ण और श्री राम के संकीर्तन का नाम दिया। तो महाराज जी के लिए तो जो कार्य करना है तो सारे विश्व के जो मानव जाति के लिए है उसके लिए कार्य करना है, किसी विशेष समुदाय या उसके लिए कार्य नहीं करना है। तो महाराज जी वहां पर उनके कल्याण के लिए पधार रहे हैं और वो अपने मिशन में सफल होंगे, ऐसी मेरी उनके साथ में कामना है। करना चाहूंगा एक बहुत ही महत्वपूर्ण निवेदन करना चाहूंगा कि संतों की वाणी में ईश्वर के नाम के प्रवचन में सब ईश्वर की कथा में बहुत भारी शक्ति है। यहाँ पर मैं आपको स्मरण कराना चाहूंगा कि गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को नाना प्रकार से समझाया और उनके इस मार्ग बतलाए कि किस किस मार्ग कर्मयोग भक्तियों किन किन मार्गों पर चल करके मेरी भक्ति प्राप्त हो सकती है, मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, मनुष्य मुझ तक पहुंच सकता है। लेकिन अंत में 18वें अध्याय के आखिरी श्लोक के पहले 5वें श्लोक में भगवान ने अर्जुन से कहा कि अगर और कुछ न बन पड़े तो जहां मेरी चर्चा होती है या प्रवचन होता है या मेरे नाम का संकीर्तन होता है या विद्वान लोग संत लोग मेरे चरित्र का चित्रण करते हैं वहां पर मन लगा करके एकाग्र चित्त से भक्ति भाव से उसको श्रवण करने से मेरी भक्ति की प्राप्त हो जाती है और उस व्यक्ति के अंदर वो भक्ति के समस्त लक्षण प्राप्त हो जाते हैं, वो समस्त उसका स्वभाव बदल जाता है और उसमें वो सारे गुण प्राप्त हो जाते हैं जो इन भक्ति के लिए है। तो उन्होंने द्वादश अध्याय में भक्ति के लक्षण बताते हुए कहा है कि अदृष्टा सर्वभूतानाम नेत्रा करुण एवच निर्ममो निरहंकारा समा दुखा सुखा छमी संतुष्टा सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय मई अर्पित मनोबुद्धिर ये मदभक्ता समय प्रिया। उनका कहने का मतलब ये था कि जब मनुष्य के अंदर में भक्ति भावना पैदा हो जाती है तो हो जाता है कि बिन द्वेष सारे, उसका हिंदी तर्जमा है कि बिन द्वेष सारे प्राणियों का मित्र करुणावान हो, सम सुख दुख में मदन ममता क्षमाशील महान हो। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता था कि महाराज जी वहां पर भगवत नाम का प्रचार करेंगे, वहां पर भगवत कथा कहेंगे, श्री कृष्ण के चरित्र का चित्रण करेंगे, तो अगर वहां पर हजारों वहां के वासी उसका श्रवण करेंगे तो उसमें से अगर 5% 10% के अंदर में भी श्री कृष्ण के प्रति, ईश्वर के प्रति, भगवान के प्रति अगर आस्था पैदा होगी और उनका चरित्र बदलेगा, उनका अच्छा चरित्र का निर्माण होगा, उनके अंदर ईश्वर की भक्ति पैदा होगी, तो ये बहुत बड़ा एक महाराज जी के कार्य की सफलता मानी जाएगी। तो ऐसा मैं मान करके चलता हूँ और आश्रम के भक्त लोगों की ओर से, मथुरा नगर वासियों की ओर से, समस्त ब्रजमंडल वासियों की ओर से ईश्वर से कामना करता हूँ कि महाराज जी में स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और अपने कार्य में सफलता प्राप्त करके अपना मर्तव्य पूरा करके हम लोगों के बीच में पुनः पधारे। हम आपका स्वागत करेंगे और मुझे उम्मीद है कि आपकी विदेश यात्रा से हमारा देश का, हमारी संस्कृति का, हिंदू धर्म का, ईश्वर के नाम का, ईश्वर के चरित्र का विदेशों के अंदर में प्रचार होगा। मैं आपको पुनः विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि मैं नित्य प्रति ईश्वर से इस बात की प्रार्थना करूंगा कि आप मैं सकुशल रहें और वहां के जो लंगवासी हैं वो आपके प्रवचनों से अधिक से अधिक लाभान्वित हों। इन शब्दों के साथ इस आपके विदेश गमन के पूर्व बेला पर मैं आपको विदाई देता हूँ सब लोगों की ओर से, और आपके चरणों में नतमस्तक होकर के अपने हृदय के दो भावनाओं के सुमन अर्पित करता हूँ। धन्यवाद।
कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे।